इस पॉडकास्ट में आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे मीडिया ने बिना सच्चाई जाने टेरर सस्पेक्ट घोषित कर दिया। जी हाँ, द एक्सीडेंटल टेरर सस्पेक्ट। साजिद खान हर सवाल पर चौकन्ना हो जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हर शब्द सुनने की और अपनी बात कहने की कोशिश करता है। पश्चिमी बेंगलुरु में एक लॉज के अंधेरे कमरे में दो दिनों से पड़ा ये शख्स अजनबी चेहरों को देखकर आतंकित है। इस आतंक और डर की खास वजह है, बेंगलुरु में एक हफ्ते पहले मीडिया ने उसे संदिग्ध आतंकी करार दे दिया था और उसे चार दिनों तक इस बारे में मालूम भी नहीं था। लॉज की दीवारों पर पान की पीक के धब्बों के साथ काले रंग का एक कोट टंगा है। ये वो कोट है जिसे साजिद ने 6 मई को मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन पर पहन रखा था। उस शाम सीसीटीवी के फुटेज में साजिद को स्टेशन से बाहर निकलते हुए नोट किया गया। जैसे ही साजिद मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरा, मेटल डिटेक्टर की लाइट जल उठी। इसके फौरन बाद मीडिया में उसे लेकर स्टेशन पर बम लगाने की साजिश रचने की कहानियां चलने लगी। मीडिया के कुछ हलकों ने उसके काले कोट को बॉम्ब वेस्ट भी बता डाला। अब अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण में बैठा साजिद पिछले हफ्ते खुद पर लगे इल्जामों से सकते में है। साजिद कहते हैं, साहब वो बम होने की बात कह रहे हैं, मैं तो अपने बच्चों के लिए पटाखे तक नहीं खरीद सकता। ये बातें 38 साल के साजिद अपनी पत्नी और अपने 2 साल के बच्चे की ओर इशारा करके कहते हैं, जो लॉज की फर्श पर बैठे हुए हैं। 4 साल पहले राजस्थान के झुंझुनू में आए अकाल में साजिद की फसल बर्बाद हो गई। उस वक्त साजिद पहली बार बेंगलुरु आया। बेंगलुरु में रहने वाले उसके कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि वहां ज़कात के रूप में काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। ज़कात मतलब रमज़ान के दौरान दिया जाने वाला दान, जिनसे मुश्किल भरे समय में उसके परिवार को मदद मिल सकती है। उस समय से वो हर साल रमज़ान के महीने में अपने परिवार के साथ बेंगलुरु आता है और दरगाह और बाकी धार्मिक जगहों के पास से ज़कात जमा करता है। ईद से पहले शहर छोड़ते समय एक महीने में उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि राजस्थान में कई महीनों तक उसका गुजारा चल जाए। साजिद कहते हैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। रमज़ान के महीने में हम शहर के अलग अलग हिस्सों में भीख मांग कर पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे कुछ महीने हमारा गुजारा चल जाता है। मेरी एक बड़ी बेटी है, वो राजस्थान में मेरी बहन के साथ रहती है। मेरा बेटा छोटा है, इसलिए उसे हम साथ ले आते हैं। अब बात उस 6 मई की घटनाओं को याद करते हुए साजिद ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये मेट्रो स्टेशन है। मैजिस्ट्रिक इलाके के व्यस्त कॉम्प्लेक्स में शाम को भीख मांगने के बाद उसने कई लोगों को एक बड़ी इमारत में घुसते देखा। साजिद कहते हैं, मैंने सोचा कि ये भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और अंदर चला गया। उस दिन जमा हुए करीब 200 रुपये मेरी जेब में थे। अपनी आदत के मुताबिक मैंने उन पैसों को अपनी धोती में बांध रखा था। जैसे ही साजिद ने अंदर प्रवेश किया, सुरक्षा गार्ड ने उससे हाथ उठाने को कहा। मेटल डिटेक्टर की लाइट जल चुकी थी। सुरक्षा गार्ड ने उससे कन्नड़ भाषा में कुछ कहा जो उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन तब तक उसकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि ये इमारत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वो बाहर निकल गया। उस वक्त तक अंधेरा छाने लगा था। दिन में कम ब्लड प्रेशर के कारण उसकी पत्नी को चक्कर आ गया था और वो अकेली थी, लिहाजा वो वापस अपने ठहरने की जगह चला गया। अब बात मीडिया की उस रिपोर्ट की। वो मीडिया की इस रिपोर्ट से बेखबर था कि उसे संदिग्ध आतंकवादी करार दे दिया गया है, क्योंकि वो टेलीविज़न नहीं देख सकता था। 2 दिनों तक टीवी चैनलों में शहर में संदिग्ध आतंकवादी होने की कहानियां चलती रहीं, जो मेट्रो स्टेशन पर बम रखने में नाकाम रहा था। दबाव में आकर बेंगलुरु पुलिस ने शहर के सभी मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया और संदिग्ध आतंकवादी की तलाश के लिए 3 स्पेशल टीम गठित किया। मेट्रो स्टेशन से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर साजिद अपनी पत्नी को खाना खिलाने के बाद रात गुजार रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि पूरे शहर में उसकी खोज हो रही है। अगले 3 दिनों तक साजिद भीख मांगता रहा। इन दिनों मैजेस्टिक के बजाय वो शहर के दूसरे इलाकों में भीख मांग रहा था। आखिरकार 10 मई को उसे हिरासत में ले लिया गया। 10 मई को मैजेस्टिक इलाके का चक्कर लगाने के बाद वो बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में एक दरगाह में गया। मीडिया रिपोर्ट से वाकिफ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसे देखा और फौरन पुलिस को इत्तला किया। इसके बाद पुलिस ने उस इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। मस्जिद से वापस लौटते वक्त किसी ने पीछे से साजिद को पकड़ लिया। ये एक पुलिस वाला था, जिसने उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे साथ चलने को कहा। साजिद ने पूछा कि उसका गुनाह क्या है, लेकिन पुलिस वाले ने उससे इतना ही कहा कि सीनियर अधिकारी उससे मिलना चाहते हैं। मेट्रो स्टेशन जाने के 4 दिनों बाद पुलिस स्टेशन जाकर उसे पता चला कि इस बीच क्या हुआ है। पुलिस ने कई घंटों तक उससे पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए गए। तलाशी के लिए उसे उसके निवास ले जाया गया, जहां पुलिस को देखकर उसकी पत्नी बेहोश हो गई। पूरी रात पूछताछ के बाद पुलिस मान गई कि साजिद महज एक भिखारी है जिसे मेट्रो ट्रेन के बारे में भी मालूम नहीं है। पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने तक साजिद को लॉज के कमरे में पुलिस की निगरानी में रखा गया। पुलिस को यह भी आशंका थी कि उसे छोड़ देने पर उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में अब भी मीडिया रिपोर्ट प्रसारित हो रही थी। उसे क्लीन चिट मिलने की बात मीडिया ने अपने प्राइम टाइम खबरों में शामिल नहीं किया था। उसका बेटा निगरानी करने वाले कांस्टेबल के मोबाइल फोन से खेल रहा है, लेकिन साजिद परेशान है। घर पर बैठे रहने का मतलब उसे आमदनी से महरूम रहना है, जिसके जरिए वो अपने परिवार की देखरेख कर सकता है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना खत्म होने से पहले उसे पर्याप्त धन इकट्ठा करना है। दोबारा वो बेंगलुरु आएगा या नहीं, इसे लेकर वो उहापोह में है। अगर उस शहर के लोग मुझ पर दया करेंगे और इजाजत देंगे तो मैं वापस आऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं अब क्या करूंगा, साजिद ने कहा। आगे क्या करना है इसे लेकर वो उहापोह में है। फिर भी एक बात साफ है, अब वो जिंदगी में कभी मेट्रो स्टेशन नहीं जाएगा। आजान सुनते ही साजिद कहता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन वो जानता है कि सही इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और खासकर रमजान के पवित्र महीने में।